मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 23 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी दृष्टि मुंडे का जो ठाणे महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मित्रों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपको जियो और फेसबुक के बीच में जो एक समझौता हुआ है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले कुछ दूसरी खबरों को हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत में कोविड से करना चाहूंगा। देख रहे हैं कि आपकी हमारे रेडियो समाचार ने अपने आप को कोविड विशेषांक के रूप में तब्दील कर दिया है। रात का जो समाचार रात का जो बुलेटिन आता है वो इसी विषय से संबंधित होता है, हालांकि दूसरी खबरें भी उसमें होती हैं। और सच पूछे तो कोविड की चुनौती कुछ है ही इतनी बड़ी कि कोविड के समाचार ही अभी एक तरीके से भारतीय समाचार ही नहीं बल्कि दुनिया के समाचार बन गए हैं। एक अच्छी खबर है मित्रों, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी अच्छी खबरों को अपने दिमाग में शामिल हमें करते रहना चाहिए ताकि हमारा धैर्य बना रहे और हमारा साहस आगे बढ़ सके। एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 20 दिनों का एक डेटा आया है और उसमें यह बताया गया है कि दुनिया में जो मृत्यु की दर है कोविड को लेकर के वह लगातार घट रही है और पिछले 20 दिनों में यह 13% से घटकर 4% हो गई है। बहुत अच्छा सुधार हुआ है, सुधार इस मायने में कि जो मृत्यु दर है वो कम होती चली जा रही है। पहले 13% की दर से मृत्यु हो रही थी, अब वो 4% की दर से हो रही है। और इससे पहले अगर 15 मार्च से 1 अप्रैल का डेटा हम देखें, ये तो हम 1 अप्रैल से अभी तक का डेटा देख रहे हैं, 15 मार्च से लेकर के आप कह लीजिए कि लास्ट मार्च तक का डेटा देखें तो उसमें जो मृत्यु दर थी वो 18 थी। तो यूं कह लीजिए कि हम 18 से 13 पर आए और अब हम 4 पर आ गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और अच्छी बात यह है कि चूंकि यह डेटा विश्व स्तर पर है और कोविड का जो प्रभाव है पूरे विश्व स्तर पर है, ऐसी स्थिति में हम थोड़ी सी सांत्वना के बारे में अपने दिमाग में एक तथ्य डालकर थोड़ी देर के लिए शांत रह सकते हैं और इनफैक्ट रहना भी चाहिए। जो दूसरी खबर है मित्रों वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। उस फैसले को आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, सिविल सर्विस के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है या तथ्य के रूप में ही सही। दरअसल हुआ यह था कि जो हैदराबाद, अब तो वो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों में विभाजित हो गया है, जब ये अविभाजित राज्य था तो वहां के राज्यपाल ने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में ये कहा गया था, इसकी बारीकियों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा गलती न हो जाए, कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के स्कूल हैं, याद रखिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के स्कूल हैं, केवल अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के स्कूलों में वहां जो शिक्षकों के पद होंगे वो 100% आरक्षित होंगे। किसके लिए होंगे? शेड्यूल ट्राइब के टीचर्स के लिए, यानी कि वहां जितने भी पद निकलेंगे टीचर्स के उस पर केवल शेड्यूल ट्राइब के ही टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, फिर इसे आप यूं कह लीजिए कि चुनौती दी गई, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसे ओके कर दिया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये 100% का आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो ऑर्डर हुए थे वो सन 2000 में हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 100% का आरक्षण जो है मान्य नहीं है, यानी कि अमान्य है। ये एक तथ्य है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अब आइए हम एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं और वह है अध्यादेश। एक अध्यादेश लाया गया है और उस अध्यादेश के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अभी कोविड-19 में जो भी स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्सेज हों, या भी किसी भी तरह के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हों, यदि उन पर हमला किया जाता है तो उन्हें दंड देने की व्यवस्था की गई है और यूं कह लीजिए कि कड़े दंड की व्यवस्था की गई है और कुछ और भी प्रोविजंस किए गए हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। व्यवस्था ये की गई है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी पर कोई हमला होता है तो जो उसकी जांच है वो 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी, 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी और पूरा का पूरा जो प्रोसीडिंग होगी, यानी कि जो न्यायालय के जो भी होंगे, 1 साल के अंदर पूरे किए जाएंगे और इसके तहत जो हमला करने वाले हैं उनको 3 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। और यदि हमला करने पर चोट गंभीर है तो उसमें 6 माह से 7 साल तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। और यदि हमला करते समय किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, डॉक्टर के क्लिनिक को या और उनकी गाड़ियों को, तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान होगा उसकी दुगनी राशि वसूल की जाएगी। ये इसका मुख्य, आप यूं कह लीजिए कि इसके मुख्य प्रावधान हैं। यहां मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा और मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का शासन था तो 1897 में, 1897 सन 1897 में मुंबई में प्लेग फैला था, मुंबई में। तो उस प्लेग को नियंत्रित करने के लिए एक कानून पारित किया गया था जिसे हम कहते हैं महामारी कानून, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। यहां याद रखना है आपको, ये मुंबई के लिए था और उस समय मुंबई में प्लेग फैला हुआ था। इस कानून में सुधार किया गया है, इसी कानून में आप यूं कह लीजिए कि ये ऐड किया गया है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कल या परसों मैंने जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनका एक लेख आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है, मेरी समझ से शायद कल की ही बात है। आप देखेंगे कि उस लेख के बिल्कुल लास्ट में उपराष्ट्रपति जी ने ये बात कही है कि जो 1857 का महामारी कानून है अब उसमें परिवर्तन किए जाने की जरूरत है, और इनफैक्ट अध्यादेश के माध्यम से वही किया गया है। देखिए, जो महामारी बीमारी कानून 1897 था उसमें और इसमें क्या फर्क है, वो देखिए उस समय की स्थितियों के आधार पर था, 125 साल से अधिक हो गए उसको, है ना। तो उसमें यह किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक वारदात करता है तो उसको सजा देने का कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि कानून के तहत जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यदि उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो इसे अपराध माना जाएगा, बस। उसमें हिंसक घटनाओं की बात नहीं की गई थी। अभी जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें हिंसक घटनाओं को शामिल किया गया है। अब आप देखिए कि कानून के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो इसे अपराध माना जाएगा, जरूरी है, इस तरह का कानून तो होना चाहिए। तो हम अभी इसको किस तरीके से लागू कर रहे हैं, क्या भारत अपने इस COVID-19 के दौर में या लॉकडाउन के दौर में इसे लागू कर रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब धारा 144 लागू की गई थी, जिसे हम कर्फ्यू के नाम से जानते, धारा 144 लागू की गई थी, तो उसी दौर में धारा 188 की बात भी आई थी और मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में इसे कवर भी किया था। धारा 188 में यह बात कही गई है कि यदि आप पालन नहीं करते हैं आदेश का या सरकारी अधिकारी को ड्यूटी करने से रोकते हैं तो वह अपराध माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस जो 1897 का कानून है उसमें हिंसक घटनाओं को भी ऐड कर दिया गया है। तो इस बारे में आपकी, मुझे लगता है कि यह दृष्टि साफ रहनी चाहिए। मित्रों, अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं, और मुख्य विषय है कि किस तरीके से जो हमारी जियो कंपनी है, जियो कंपनी के बारे में आप, मेरा पूरा विश्वास है कि मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में मैं थोड़ा सा गरीब व्यक्ति हूँ। तो जियो, और जियो को आप कह लीजिए रिलायंस जियो, और फेसबुक के बारे में भी आप मुझसे अधिक जानते हैं। अगर इन दोनों के मालिकों का नाम लें तो आप कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी और जकरबर्ग, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता क्या कह लीजिए कि सौदा हुआ है, और जकरबर्ग ने, जिसके पास व्हाट्सएप है, जिनके पास फेसबुक है, जिनके पास इंस्टाग्राम है, आप जानते हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इन सब का आप उपयोग भी कर रहे हैं, उन्होंने जियो, जो रिलायंस जियो है, जो आप लगातार जिस पर बात कर रहे हैं, 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है, 10% से थोड़ा सा ही कम। और इसके लिए मोटे तौर पर चलिए हम मान लेते हैं कि लगभग 44,000 करोड़ रुपए दिए हैं, एग्जैक्ट है 43,574, एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इसे 43,500 करोड़ कह लें या चाहे 44,000 करोड़ कह लें, वैसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप 43,500 करोड़ रुपए कहें। तो ये दोनों के बीच में समझौता हुआ है, और आप जानते हैं कि ये दोनों कितनी बड़ी कंपनियां हैं। अगर हम जकरबर्ग की बात लें तो भारत में ही व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों की संख्या है लगभग 40 करोड़, सोच करके देखिए 40 करोड़ और जियो के पास भी लगभग लगभग इतने ही सब्सक्राइबर हैं, इतने ही जियो का जो उपयोग कर रहे हैं 39 करोड़, एक करोड़ ही कम है। और इसके बाद जो फेसबुक है, फेसबुक का जो के जो यूजर है इंडिया में वे 25 करोड़। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, इसमें ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और फेसबुक दोनों को यूज कर रहे हैं, तो दोनों डेटा इसमें है। लेकिन चलिए हम उसको 40 करोड़ की जगह 50 करोड़ मान लेते हैं और फिर जियो के 40 करोड़ जोड़ लेते हैं तो 90 करोड़। मतलब भारत में 90 करोड़ लोगों के डेटा इनके पास है। अब मैं थोड़ी सी समीक्षा पर आ रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये करेंगे क्या। रिलायंस जो है अब धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग में आ रहा है ना। जिस तरह से आप देखते हैं कि वॉलमार्ट और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सामान बेचते हैं, जियो आपके रिलायंस भी धीरे धीरे उस फील्ड में आ रहा है, ठीक है, रिटेल मार्केटिंग। और आप देखिए कि बाकायदे मुकेश अंबानी जी ने ये बात कही भी है कि भारत में, मतलब एक आंकड़े इसको लिए गए हैं कि लगभग 3 करोड़ किराना दुकानदार है, 3 करोड़ किराना दुकानदार, और इन सबको ये बकायदे अपने सिस्टम से जोड़ेंगे, अपने ऑनलाइन कारोबार से जोड़ेंगे। और कल्पना करके देखिए कि इनकी रिच क्या हो जाएगी। और यहां तक कि जियो के अपने जो स्टॉल्स हैं या कह लीजिए कि जो छोटे छोटे जो दुकानें हैं जगह जगह पर, उनकी संख्या भी लगभग 7000 के करीब है, जो शहरों में भी हैं, कस्बों में भी हैं। तो आप ताकत सोचिए, है ना, इनके हाथ सोचिए कितने फैले हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखिए कि इनके पास 90 करोड़ लोगों के डेटा हैं, डेटा इनके पास है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो किसके पास है, बकायदे आप जकरबर्ग के पास है डिजिटल प्लेटफॉर्म, और नो डाउट इनके पास भी है। तो डेटा पर इनका पूरा नियंत्रण हो गया, पूरा नियंत्रण हो गया। और ये दोनों इतने जायंट्स, इतने पैसे वाले लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मुकेश अंबानी जी को आप जानते हैं, हिंदुस्तान के सबसे धनी व्यक्ति में से हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और जकरबर्ग कोई छोटी चीज नहीं है, छोटे व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। और फिर जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, बस इसके आधार पर आप ये जानने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग में ये बातें लाने की कोशिश कीजिए कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या होगा। और आपको ये भी दिमाग में रखनी होगी कि हमारा जो 90% जो रिटेल मार्केट है, 90% रिटेल मार्केट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, छोटे छोटे दुकानदार हैं, गांव में, शहरों में भी छोटे छोटे हैं, मोहल्लों में दुकानें हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों मिलकर के पूरे रिटेल मार्केट पर कब्जा कर लेंगे? इसको लेकर के एप्रिहेंशन व्यक्त की जा रही है। अभी तो इनको अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी से इनके सौदे को अभी स्वीकृति मिलनी है, देखते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती है। लेकिन इस बात का भय है, क्या आपको नहीं लगता है कि बाजार से कंपटीशन हो सकता है कि बिल्कुल खत्म ही हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि इनके सामने कौन टिक सकेगा? जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरी कंपनी का व्यक्ति हूं या मैं अपना रिटेल मार्केट दूसरा कर रहा हूं, मेरे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मैं अपना एड दे रहा हूं व्हाट्सएप को कि आप मेरा एड चला दो, मैंने यह सामान तैयार किया है, मेरी भी दुकान का एड कर दो, तो मना कर सकता है क्योंकि मेरा जो एड है उनके हित से चोट पहुंचाएगा, उनके हित पर चोट पहुंचाएगा, तो मेरे ऐड को मना कर सकता है। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन पर इनका पूरा अधिकार हो गया, डेटा पर हो गया, डेटा मैं यूज कर ही नहीं सकता हूं, प्लेटफॉर्म पर इनका अधिकार हो गया, बकायदे जो सामान बेचने की जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कीमतें होती हैं, उन पर इनका अधिकार हो गया। तो इस बात को लेकर के चिंता भी व्यक्त की जा रही है। नो डाउट कि ठीक है, इसके माध्यम से भारत में पैसा आ रहा है, इसकी हमने छूट दे रखी है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने चाइना को रोक दिया है कि नहीं, आप डायरेक्ट से नहीं आ सकते, आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते, इसके बारे में भी मैंने बात की थी। लेकिन यहां एक दूसरा रूट है, क्योंकि आपने देखा है कि जकरबर्ग को अपना पार्टनर बनाना पड़ा है, अपना पार्टनर बनाना पड़ा है बकायदे जियो को, ठीक उसी तरह से जैसे जब वॉलमार्ट भारत में आने की सोच रहा था तो सीधे सीधे वो भारत में नहीं आ सकता, उसको एक भारतीय सहायक चाहिए, साथी चाहिए कहना चाहिए, सहायक नहीं। और आपको मालूम है कि उसने फिर फ्लिपकार्ट को खरीदा और अब वो बकायदे भारत के मार्केट में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एप्रिहेंशन दोस्तों लोगों के दिमाग में है और इस बात को आपको समझना होगा, समझना भी चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ और उन्हीं में से 4 मित्रों के नाम हैं। प्रेमचंद यादव बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, दीपाधर मोहम्मद रफ़ी और पवन दुबे गांधीधाम गुजरात से आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।